लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमने दिल एक्सित नोस के पांचवें अध्याय की शुरुआत की है, जिसका शीर्षक है प्रेम के बदले प्रेम। इस अध्याय की शुरुआत करते हुए हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि यीशु प्रेम के प्यास के बारे में घोषित करते और उसके बारे में अपने को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस रूप में हम उस प्यास के बारे में प्रत्युत्तर देते हैं, उसके संबंध में वे उदासीन नहीं हैं। उनके शब्दों में, मैं प्यासा हूँ, लेकिन यह वह प्रेम है जो मानव को परम पवित्र संस्कार के प्रति प्रेम करने की मांग को व्यक्त करता है। यह प्यास मुझे उद्वेलित करता है और मैंने किसी व्यक्ति को नहीं पाया है जो इसका प्रयास करता हो, जो मेरी चाह के अनुरूप मेरी प्यास बुझाने की कोशिश करता हो, जो मेरे प्रेम का एक उत्तर देता हो। यीशु हमसे प्रेम की चाह रखते हैं। एक बार विश्वासी का हृदय इस बात को अनुभव करता है, उसे बलिदानों की चाह नहीं होती या वह अपने को एक भारी कार्य से निवृत्त कर लेता है। मैंने ईश्वर से अत्यधिक प्रेममयी कृपा पाई है और मैं उनसे प्रभावित उन्हें दूसरों के संग बांटने की चाह रखता हूँ। प्रेम का उत्तर प्रेम से देने की चाह। जैसे लियो 13वें ने पवित्र हृदय की आकृति की ओर इंगित कराते हुए कहा, यीशु का प्रेम हमें प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से देने को प्रेरित करता है। श्रोताओं, हमें पुनः ईश्वर के वचन को अपने में ग्रहण करते हुए उसे अनुभव करने की जरूरत है। ऐसा करने के द्वारा हम ख्रीस्त के हृदय के प्रेम का प्रत्युत्तर बेहतर रूप में अपने भाई बहनों की सेवा में देते हैं। प्रेम का उत्तर प्रेम में देने से बड़ा हमारे लिए और कोई दूसरा कुछ नहीं है। धर्म ग्रंथ इसे हमारे लिए स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। तुमने छोटे से छोटे उन भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया, वह तुमने मेरे लिए किया, क्योंकि संहिता की सारी बातें एक नियम में समाहित हैं। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। हम जानते हैं हमने मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता, वह मृत्यु में निवास करता है। यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को, जिसे उसने कभी नहीं देखा, प्यार नहीं कर सकता है। श्रोताओं, हमारे भाई बहनों के लिए हमारा प्रेम हमारे स्वयं के प्रयास का फल नहीं है या हमसे अपने स्वार्थपूर्ण हृदय में परिवर्तन लाने की मांग करता है। यह अनुभूति हमारे लिए उस प्रेम की उत्पत्ति को लाती है जिसे हम बारंबार दोहराते हैं, यीशु हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना। संत पौलुस अपनी ओर से अपने सुनने वालों के अच्छे कार्यों के निर्वहन हेतु शक्ति मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करने को कहते हैं, लेकिन आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। श्रोताओं, हमें अपने में इस बात को याद करने की आवश्यकता है कि रोमन साम्राज्य के समय बहुत से गरीब, परदेशी और अन्य दूसरे जो समाज के हाशिए में जीवन यापन करते थे, उन्हें ख्रिस्तियों से सम्मान, प्रेम और सेवा प्राप्त हुई। यह हमारे लिए इस बात का जिक्र करता है कि धर्म त्यागी सम्राट जूलियन अपने एक पत्र में इस बात को स्वीकार करते हैं कि यही वह कारण था कि ख्रिस्तियों का सम्मान और अनुसरण किया गया, क्योंकि वे गरीबों और अपरिचितों की सहायता करते थे जो साधारणतः दूसरों के द्वारा बहिष्कार और घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। जूलियन के लिए ख्रिस्तीय जिनसे वह घृणा करता था, यह असहनीय था कि अपनों को खिलाने के साथ वे गरीबों और जरूरतमंदों को खिलाते थे जिन्हें उनकी ओर से कुछ सहायता नहीं मिलता था। सम्राट ने इस भांति इस बात पर जोर दिया कि सेवा कार्य संस्थानों की स्थापना की जाए जिससे उन ख्रिस्तियों के संग प्रतिस्पर्धा की जा सके और उस भांति उन्होंने सम्मान हासिल किया। हर एक शहर में निवासगत संस्थान हो जिससे प्रवासी हमारे भलाई के कार्यों से लाभान्वित हो सकें और यूनानियों को इस उदारता के कार्य हेतु अभ्यास करने की जरूरत है। जूलियन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उन कार्यों के पीछे ख्रिस्तीय दान की तुलना में कुछ नहीं था जो प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय गरिमा का सम्मान करता था। श्रोताओं, समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के संग संबंध स्थापित करते हुए यीशु ने हर मानव की गरिमा को एक उच्च पहचान प्रदान की, विशेषकर उन लोगों की जो अयोग्य समझे जाते थे। मानव इतिहास में यह नया सिद्धांत जो इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत रूप में हम अपने में अधिक सम्मान और प्रेम के हकदार हैं जब हम कमजोर, तिरस्कार या दुख के शिकार होते हैं, यहाँ तक कि उस परिस्थिति तक भी जहाँ व्यक्ति अपनी पहचान को खोने की स्थिति में आ जाता है। इस तथ्य ने विश्व के चेहरे को बदल दिया है। इसने उन संस्थानों को जीवन दिया है जो उन लोगों की देखरेख करते हैं जो अपने को वंचित परिस्थितियों में पाते हैं, जैसे कि परित्याग किए गए नवजात, अनाथ, बुजुर्ग जो बिना सहायता के छोड़ दिए जाते हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग, वे जो अपने को असाध्य रोग या गंभीर विकृतियां से बुरी तरह ग्रसित पाते हैं और जो गलियों में जीवन यापन करने को बाध्य हैं। यीशु के बेधित हृदय पर चिंतन करते हुए जो हमारी सारी कमजोरियों और बीमारियों को अपने ऊपर लेते हैं, हम भी दूसरों के दुखों और जरूरतों के प्रति और अधिक सजग होने हेतु बुलाए जाते हैं और हमारे प्रयासों से इस बात की पुष्टि करने को कहे जाते हैं जहां उनके प्रेम को प्रसारित करने के साधन स्वरूप हम उनकी मुक्ति के कार्य में सहभागी होते हैं। यीशु ख्रिस्त का अपनों को हम सबों के खातिर देने पर चिंतन करते हुए हम स्वाभाविक रूप से इस बात को अपने में पूछने हेतु अग्रसर होते हैं कि हम भी दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित करने को क्यों ना तैयार हों। हम इस तथ्य से यह जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, अतः हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, उन्होंने हमें प्रेम किया है कि एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
त्राही त्राही के समय पराजय में हर समय, त्राही त्राही के समय पराजय में हर समय, येसु जी का नाम ही प्रेम दान है अभय, येसु जी का नाम ही प्रेम दान है अभय, त्राही त्राही के समय शहद से भी अधिक मधुर है ईशवाणी मोहनी, रवि किरण सुहानी ऐसी ईशवाणी, रवि किरण सुहानी ऐसी ईशवाणी, आओ मिलके हम सुने ईशवाणी हर समय, आओ मिलके हम सुने ईशवाणी हर समय। त्राही के समय पराजय में हर समय, त्राही त्राही के समय।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने मंगलवार को सिरो काते कलीसिया के सिनट के सदस्यों से मुलाकात की, जो अपने सिनट की आम सभा के लिए रोम आए हैं। सिरो काते कलीसिया भारत में उत्पन्न दो पूर्वी काते कलीसियाओं को संदर्भित करता है, सिरोमलाबार काते कलीसिया और सिरोमलंकरा काते कलीसिया। दोनों पोप एवं विश्वव्यापी काते कलीसिया के साथ पूर्ण सामंजस्य में हैं, लेकिन अपनी अनूठी धार्मिक परंपराओं और शासन संरचनाओं को बनाए रखते हैं। एफेसियों के नाम लिखे पत्र में संत पॉलुस की सलाह का हवाला देते हुए संत पापा लियो ने सिनट के सदस्यों को सच्चाई के अनुसार आचरण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ईश्वर की कृपा से घाव पर घाव ना करें, बल्कि एक मजबूत एकता का लक्ष्य रखें जो आपको संचार एवं मिशन में बढ़ने देगा। एकता को फिर से खोजने के लिए सच बोलना है। आपके महान पिता अंतियो के संत इग्नासियस ने आग्रह किया था, एकता से प्रेम करो, गुटबाजी से दूर रहो। वास्तव में हम दुनिया से शांति की मांग कैसे कर सकते हैं यदि हम अपने बीच में शांति से नहीं रहते? हम सामाजिक विभाजन को कैसे ठीक कर सकते हैं यदि हम परिवार में ही एकजुट नहीं हैं? और हम विश्वासी समुदाय के लिए आशा के गवाह कैसे बन सकते जब हम हिंसा और संघर्ष से पीड़ित हैं? संत पापा ने कहा, हमें सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारी ओर देखते हैं और हमसे उदाहरण पेश करने की उम्मीद करते हैं। मैं आपके क्षेत्रों सीरिया, इराक, लेबनान, पौत्र भूमि और पूरे मध्य पूर्व में भयंकर रूप से कठिनाई में पड़े लोगों के बारे सोचता हूँ। वे लोग जो कठिनाई सहते लेकिन विश्वास से इनकार नहीं करते, समुदाय जिन्होंने पहले ही बहुत आंसू बहाए हैं, उन्हें अपने चरवाहों में एकता एवं भाईचारा पाने की जरूरत है। संत इग्नासियस के उदाहरणों पर चलते हुए संत पापा ने उन्हें एक ऐसी एकता का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया जो काल्पनिक नहीं होती। इस अर्थ में उन्होंने सिनट के सदस्यों को वीणा के तारों की तरह एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे अपनी सहमति के सामंजस्य में एकता में ईश्वर के स्वर को लेते हुए एक स्वर में गा सकें। अंत में संत पापा ने कहा, मैं आपके करीब हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ और मैं आपके साथ लगातार उस जानकारी के माध्यम से चलता हूँ जो मेरे प्रतिनिधि मुझे हर दिन भेजते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और आपको हमारी माता मरियम को सौंपता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि आप सच्चाई से और प्रत्येक अपने जिम्मेदारी के अनुसार मार्ग में मौजूद बाधाओं को एक साथ दूर करें, सुसमाचार के साथ उभरें और अपने विश्वासियों को एक विश्वसनीय गवाह दें। जापान में विश्व एक्सपो वैटिकन के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कार्डिनल पियत्रो परोलिन बतलाते हैं कि किस प्रकार सौंदर्य और आशा निराशावाद एवं भय के प्रतिकारक हैं। जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में वैटिकन के राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए वैटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोली ने पोप लियो 14वें की ओर से पूरे जापानी लोगों को शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड एक्सपो के मंत्री को संबोधित अपने संदेश में कार्डिनल ने वैटिकन और जापान के बीच संबंधों के लंबे इतिहास पर प्रकाश डाला, जो 1555 में एक जापानी कैथोलिक के साथ पोप की पहली मुलाकात की 470वीं वर्षगांठ मना रहा है। मंडप के विषय पर आगे बढ़ते हुए कार्डिनल ने तर्क दिया कि आशा सुंदरता के इस विचार से निकटता से जुड़ी है। उन्होंने समझाया कि ख्रिस्तों के लिए आशा ईश्वर में विश्वास और मानवता के प्रति उनके प्रेम में निहित है, यह व्यक्तिगत सफलता की इच्छाओं तक सीमित नहीं है। कार्डिनल परोली ने कहा कि आशा आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हिंसा और दुनिया भर में चुनौतियों से भरे समय में भविष्य अक्सर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी ओर लोग डर से देख रहे हैं। कार्डिनल ने जोर देकर कहा, केवल आशा में ही हम डर का प्रतिकार एवं प्रतिबद्धता तथा कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन पाते हैं। आशा लोगों को अपने समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। यह संवाद एवं सहयोग के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता का आह्वान बन जाती है, खासकर जब तनाव एवं संघर्ष असहनीय लगते हैं। बिनतियों के धर्माध्यक्ष ने दक्षिणी सूडान की नाजुक स्थिति पर चर्चा की, जब देश 2026 के चुनावों की ओर बढ़ रहा है। कोम्बोनी मिशनरी ने सुसमाचारी शांति एवं अहिंसा को साहसपूर्वक अपनाने का आह्वान किया। कलीसिया स्कूलों और स्थानीय समुदायों से युवाओं को शांति, न्याय एवं मेल मिलाप की शिक्षा देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। दक्षिणी सूडान में 2026 में होने वाले चुनावों की तैयारी के बीच बेंतियों के धर्माध्यक्ष कृष्ण कर्ला सारे का कहना है कि देश में उम्मीद एवं गंभीर चिंता दोनों के संकेत हैं। वे हो रही हिंसा की निंदा करते हैं जिनमें नागरिकों को निशाना बनाया गया। धर्माध्यक्ष कर्ला सारे, जो स्वयं 2021 के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, देश में एक अत्यंत नाजुक क्षण की चेतावनी देते हैं, जो ध्रुवीकरण, हथियारों के प्रसार और संवाद में कमी से चिन्हित है। उन्होंने एक संदेश में लिखा, सुनने की अपेक्षा पूर्वाग्रह को प्राथमिकता दी जा रही है तथा मेल मिलाप की अपेक्षा हिंसा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने इस गतिशीलता पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य देश को स्थायी रूप से संघर्ष एवं मानवीय संकट की स्थिति में रखना है। जवाब में धर्माध्यक्ष ने सुसमाचारी शांति को पूरी तरह से अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमें दुनिया द्वारा प्रस्तावित शांति का स्वागत नहीं करना चाहिए जिससे शक्तिशाली लोग सैन्य बल के माध्यम से पेश करते हैं, बल्कि सुसमाचार में वरदान के रूप में पेश की गई शांति का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने दक्षिणी सूडान के लोगों से अहिंसा का मार्ग चुनने का आग्रह किया, जो हमारे समय में और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि यही मानवीय गरिमा की रक्षा का एकमात्र तरीका है। पोप लियो 14वें के शब्दों को दोहराते हुए धर्माध्यक्ष कर्ला सारे ने संघर्ष के वास्तविक कारणों को उजागर करने, बयानबाजी, झूठ और निहित स्वार्थों को उजागर करने के लिए आत्मपरक का आग्रह किया। वे बतलाते हैं कि सच्ची शांति के लिए समुदायों के भीतर रिश्तों को बदलना और युवा पीढ़ी को शांति के मूल्यों में ढलना होगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।